Recording in progress.
أوكي، الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. سورة بني اسرائیل کی آخری دو آیات کی تفسیر ہم کل کی کلاس میں پڑھنا شروع کر چکے تھے. معارف و مسائل پڑھ رہے تھے پیج نمبر 542 سے، جو آپ کے سامنے سکرین پر ڈسپلے بھی ہوا ہوا ہوگا. تو ان آیات کی تفسیر میں حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے جو آخری بات ہم نے پڑھی تھی وہ لکھی تھی کہ دنیا میں جس سے مخلوق کو کسی قدر بھی قوت پہنچا کرتی ہے، وہ کبھی تو اپنے سے چھوٹا ہوتا ہے جیسے اولاد، اور کبھی وہ اپنے سے برابر ہوتا ہے جیسے کوئی شریک، اور کبھی اپنے سے بڑا ہوتا ہے جیسے حامی و مددگار. تو اللہ تعالیٰ نے، حق تعالیٰ نے اس آیت میں بترتیب تینوں کی نفی فرما دی. اللہ تعالیٰ کو تینوں قسم میں سے کسی ایک قسم کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اب اس کے بعد ایک مسئلہ، یعنی مسئلے سے مراد یہ کہ شرعی جو مسائل ہوتے ہیں، یعنی جس کے بارے میں ایک سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ بھئی فلانا کام کیسے کرنا چاہیے. مسئلہ کا مطلب یعنی جس چیز کے بارے میں سوال پوچھا جائے. مسئلۃن سوال سے یہ لفظ نکلا، ٹھیک ہے؟ تو ایک شرعی مسئلہ لکھا کہ آیت مذکورہ میں نماز کے اندر تلاوت کرنے کا یہ ادب بتایا گیا ہے کہ بہت بلند آواز سے ہو، نہ بہت آہستہ آواز سے ہو جس کو مقتدی نہ سن سکیں، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ حکم ظاہر ہے کہ جہری نمازوں کے ساتھ مخصوص ہے. ظہر اور عصر کی نمازوں میں تو بالکل اخفاء ہونا سنت متواترہ سے ثابت ہے. نماز عجیب، اللہ تعالیٰ نے نماز کو جتنا بنیادی عبادت رکھا اور جتنا زیادہ نماز پڑھنے کی تلقین قرآن مجید کے اندر کی گئی، اتنی کسی دوسری عبادت کی نہیں کی گئی. یہ ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں، لیکن نماز ہی وہ عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے، جس کے طریقے کے بارے میں سب سے کم جو ہے نا، وہ قرآن مجید کے اندر تفصیل رکھی، ٹھیک ہے؟ نماز کے اندر یعنی نماز کی کی رکعتیں کتنی ہوتی ہیں، ان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سب کو معلوم ہوگا کہ نماز میں کتنی رکعتیں ہوتی ہیں، اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں. حتیٰ کہ نماز کتنی دفعہ پڑھنی ہے اس کا بھی اشارہ ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے، یعنی پانچ نمازوں کا ذکر نہیں ہے قرآن مجید کے اندر، رائٹ؟ اشارتاً بتایا قرآن مجید کے اندر، جس سے کہ پھر نماز کی اوقات کے بھی اشارے ملتے ہیں، وہ بھی سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہی، رائٹ؟ کہ کتنی کتنی جو ہے نا، وہ آپ نے کس کس وقت میں جو ہے وہ نمازیں پڑھنی ہیں، یہ بھی اشارتاً قرآن مجید کے اندر بتایا ہے، صحیح ہے؟ اسی طریقے سے یہ بھی اس آیت کے اندر بھی کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، ہاں قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، یہ تو مل جاتا ہے کہ ہاں بھائی قرآن مجید نماز کے اندر تم پڑھو، ٹھیک ہے؟ لیکن تلاوت جو ہے وہ کیسے کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، زور سے کرنی ہے، کم کرنی ہے، وہ بھی اشارتاً، ٹھیک ہے؟ تو شاید اللہ رب العزت بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو تم میرے نبی علیہ السلام کی سنت سے جو ہے نا وہ مستغنی نہیں ہو سکتے، तुम उसके बगैर जो है ना वो दीन के ऊपर अमल नहीं कर सकते जब तक तुम मेरे नबी से जो है वो तरीकों की तफसील ना सीखो। मैं तरीकों की तफसील जो है ना वो काम कैसे करना है इसकी तफसील मैं तुम्हें सारी नहीं बता रहा, बस जो होता है ना मैं नहीं बता रहा बस तुम्हें, जाओ कर लो क्या क्या कर सकते हो तुम, जो कर लो जो करना है, इस तरह से हम करते हैं ना कि मैं नहीं बता रहा बस, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी हमारे साथ क्या, मैं नहीं बता रहा तुम्हें तफसील, तुमने ये सारी चीजें जो है वो मेरे नबी से सीखनी होंगी, ठीक है। तो हमें जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसे डिपेंडेंट फरमाया, ना सिर्फ ये कि अल्लाह ने अपना कुरान नबी अलैहिस्सलाम के वास्ते से हमें अता फरमाया, बल्कि उस कुरान के अंदर भी जो है वो सारी तफसील नहीं रखी कि हमें करना करना क्या है, ठीक है। तो हमें चाहिए कि हम भी इसी तरीके से ना नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को, नबी अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका को वो इतना अहम समझें कि भाई उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है, हम अपने परवरदिगार को राजी नहीं कर सकते, हम कामयाब नहीं हो सकते, ये एक ही रास्ता है नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है किसी किस्म की भी दुनियावी और आखरवी कामयाबी का। ये कम से कम सोच और फिक्र एक मुसलमान के अंदर होनी चाहिए, और फिर जितना इस रास्ते के ऊपर वो मेहनत कर सके, घोड़े दौड़ा सके, उसको फिर उसके अंदर मेहनत करनी चाहिए अपनी औलादों को खुसूसन, क्योंकि है तो ये मर्दों और तो दोनों की क्लास, लेकिन मर्दों की तादाद वैसे भी वर्किंग डे है और जॉब का टाइम है तो मर्दों की तादाद बहुत ही कमी होती है औरतों के मुकाबले में। तो एक तरह से देखा जाए लिल अक्सर हुक्मुल कुल का उसूल अगर लगाया जाए तो ये औरतों की ही क्लास बन जाती है, ठीक है ना। 92 कम से कम माशाल्लाह खवातीन मौजूद हैं, तो ये एक तरह से औरतों की क्लास है ना, मेजोरिटी ही को ज्यादा अहमियत हासिल होती है। तो औरतों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी कि अपने छोटे बच्चों की छोटेपन से ही ऐसी जहन साजी करें और ऐसी जो है वो उनकी तरबियत करें कि उनको नबी अलैहिस्सलाम से इश्क हो जाए और नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों के उनके अंदर एक फिक्र पैदा हो जाए, ठीक है, कि हमने काम जो है वो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके से करना है। तो उसको ढूंढना, उसको ढूंढ ढूंढ करके सीखना, उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करना, ठीक है। हमारे हजरत जी दाम बरकात हम अपने बारे में बताते भी हैं, दूसरों ने पहले बताया अपने बारे में, तो पहले बताते नहीं थे कुछ भी, अब जो है ना बुढ़ापे की ऐसी उम्र को पहुंच चुके हैं कि अब जो है ना वो इंसान चाहता है कि मैं खुद भी बता दूं लोगों को, ठीक है ना। अब कोई फितनों का खौफ वगैरह ऐसे बुढ़ापे की उम्र में होता नहीं है, जवानी में होता है तो इंसान अपने मुंह से अपनी कोई बात नहीं कर रहा होता, लेकिन एक उम्र ऐसी आती है कि जब अपने मुंह से भी जो है वो अपनी बातें जो है वो बयान करना शुरू कर देते हैं, तो अब मतलब अपने मुंह से भी बताते हैं। और हम तो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह दूसरों कई लोगों से जो है वो सुनते आ रहे हैं कि हजरत की एक बहुत खसूसी बात ये थी कि बचपन से लेकर के जो है ना वो सुन्नतों को ढूंढ ढूंढ करके निकालते थे और उनके ऊपर अमल करते थे, ठीक है। और इस की तरफ ही फिर मंसूब करते हैं इस बात को कि नबी अलैहिस्सलाम की खुसूसी मुशाबहत और खुसूसी जो निस्बत है ना वो इस इन सुन्नतों के इत्तबा की वजह से ही हजरत को भी मिली, ठीक है। तो अब हमारी उम्रें तो अक्सरों की जो है वो गुजर चुकी हैं, जब हम दीन की तरफ आए भी तो 35-40 साल तो वैसे ही जो है वो जाया कर चुके थे सुन्नतों के बगैर ही। तो कम अज कम औलाद की जिंदगी तो हम ऐसी बना सकते हैं ना, औलाद को जिनके अभी छोटे बच्चे हैं खुसूसन, वो अपने छोटे बच्चों को ऐसे सुन्नतों से जो है ना वो वाकिफियत दिलाएं, उनको इंट्रोड्यूस करें, ठीक है, कि ये होती है, ये है तरीका अल्लाह की रजा का और इसी के अंदर जो है वो कामयाबी है, किसी दूसरे तरीके के अंदर कामयाबी नहीं है। माँ अगर ऐसे बच्चे के जहन को बनाती रहे ना, दुनिया की कोई ताकत जो है वो उसके बदन उसके जहन को चेंज नहीं कर सकती। अगर माँ जो है वो अपना काम करे और बच्चे की जहन साजी करे, फिर कोई नहीं चेंज कर सकता, कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई मीडिया, कोई चीज जो है ना वो उसके अंदर से उन चीजों को नहीं निकाल सकती जो कि माँ ने उसके जहन के अंदर डाल दी, ठीक है। काश के हमारी उम्मत की माएं जो है ना वो इस बात को समझें कि अल्लाह ताला ने उनको क्या ताकत दी है, क्या कुव्वत दी है। ये दुनिया बात करती है ना आजकल एम्पावरिंग द वुमेन, एम्पावरिंग द वुमेन, ये कमजोर, ये घटिया लोग जो हैं ये क्या किसी को एम्पावर करेंगे, राइट, ये क्या किसी को एम्पावर करेंगे। बातें करते हैं, बड़ी बड़ी नारे लगाते हैं एम्पावरिंग द वुमेन, हम औरत को ताकत देंगे, तुम्हारे अपने पास कोई ताकत है जो तुम औरत को ताकत दोगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, जिसने कायनात को बनाया, जिसने इंसान को बनाया, जिसने हर चीज को बनाया, जो उसके पास कामिल ताकत है, राइट, वो वुमेन को एम्पावर करके इस दुनिया के अंदर भेजता है। वो माँ को ताकत दे करके इस दुनिया के, उसने माँ को ताकत दी है, वो है ताकत देने वाला, जिसके पास ताकत है और वो ताकत दे सकता है, उसने माँ को ताकत दी है, राइट। माँ के कदमों चल तले जन्नत, पता तो सबको है, लेकिन कौन इस बात को जो है वो समझता है कि हाँ जन्नत का मतलब क्या होता है। ये नहीं है कि माँ जो है वो खुदा बन गई है इसका मतलब, ये नहीं है कि माँ जो है वो अल्लाह की रसूल बन गई है इसका मतलब, ये हरगिज नहीं है। बल्कि माँ के कदमों तले जन्नत जो है, जब माँ अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है, उनके हुक्मों, उनकी चाहतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारती है, तो अल्लाह ताला उसी माँ की खिदमत को जो है वो औलाद के जन्नत में जाने का सबब बना देते हैं। तो माँ को तो अल्लाह ताला ने क्या कुछ दे करके इस दुनिया में भेजा। अब अगर माँ उस बात को मानने से इनकार कर दे और शैतान की बातों को सुनने में लग जाए, शयातीन की बातों को मानने में लग जाए, किसका कसूर है इसके अंदर? सिर्फ माँ का अपना कसूर है, सिर्फ औरत का अपना कसूर है, ठीक है? क्योंकि माँ जो है वो मर्द तो नहीं हो सकता ना, चाहे ट्रांसजेंडर के जितने ये मसला ये बनाए, लेकिन मर्द जो है वो माँ तो नहीं बन सकता, ठीक है? तो औरत नहीं बनना है, तो औरत जाति का सारा का सारा ये मामला है। तो नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों से पता चलता है कि दीन पे हमने अमल कैसे करना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु मोहम्मद रसूलुल्लाह जो है, ये क्या है कि इस दीन में तरीका क्या है, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। अच्छा, आगे फरमाया कि जहरी नमाज में मगरिब, इशा और फजर के फर्ज भी दाखिल हैं और नमाज तहज्जुद भी दाखिल है। जैसा कि एक हदीस में है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज तहज्जुद के वक्त सिद्दीक और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हुम के पास से गुजरे, तो सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन तिलावत आहिस्ता कर रहे थे और फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन खूब बुलंद आवाज से तिलावत कर रहे थे, ठीक है? अब घरों के अंदर तो नबी अलैहिस्सलाम इस तरह रातों को नहीं चले जाया करते थे, तो लगता यह है कि इस रात को ये सहाबा कराम जो है मस्जिद नबवी के अंदर ही, जिस तरह एक होता ना नाइट विजिल होती है, या जो है वो शब बेदारी, या क्या कहते हैं कयामुल लैल, कयामुल लैल बाकायदा वैसी नहीं जैसे कि यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है जमात की शक्ल में, दोनों अलग अलग नमाज पढ़ रहे थे, तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे, जमात में नमाज नहीं पढ़ रहे थे, अलग अलग नमाज पढ़ रहे थे ना, एक आहिस्ता आवाज में नमाज तिलावत कर रहे हैं, एक बुलंद आवाज में। जमात में ऐसा होता है, अगर जमात से पढ़े होते कयामुल लैल या तहज्जुद की नमाज, तो दोनों अलग अलग तरीके से तिलावत कर रहे होते, भाई एक इमाम होता वो तिलावत कर रहा होता, बाकी जो है वो खामोशी से सुन रहे होते। अलग अलग कयामुल लैल, अलग अलग तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे थे दोनों शेखैन रजी अल्लाह तआला अन्हुमा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया कि आप ऐसा आहिस्ता क्यों पढ़ते हैं? सलाम फेरने के बाद जब बातचीत कलाम शुरू होता है, पूछा आप इतना आहिस्ता क्यों पढ़ते हैं? सिद्दीक रजी अल्लाह तआला ने अर्ज किया कि मुझे जिसको सुनाना था उसको सुना दिया, ठीक है? अल्लाह तआला को सुनाना था ना, तो वो मैंने सुना दिया। ये सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कैसे किया, ये कैसे फैसला किया था, ये अपनी अकल से फैसला किया था, राइट, अपने कॉमन सेंस से ये फैसला किया था कि भाई अल्लाह को सुनाना है तो अल्लाह जो है वो तो दिलों की के राजों को जानता है, राइट, आंखों की जो है वो खयानत को अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है, आंख इधर हो रही है उधर हो रही है, दिमाग किधर जा रहा है, सोच किधर जा रही है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी जानता है, तो तिलावत जोर से करने की क्या जरूरत है, मैं कोई इंसानों को थोड़ी सुना रहा, ठीक है? तो अकल से सिद्दीक अकबर, यानी अकल भी इस्तेमाल करने के लिए ही अल्लाह ताला ने दी है, अकल जो है वो साइड पर रख देने के लिए और बिल्कुल इस्तेमाल ना करने के लिए नहीं दी है अल्लाह ताला ने हमें अकल, ठीक है? तो अच्छे अच्छे नेक इंसान भी अकल इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं कि बस मफलूज होकर के बैठे हुए हैं और भाई अब वो शेख साहब बताएंगे तो कुछ काम करेंगे, नहीं तो कुछ नहीं करना, राइट? दीन के कामों में हमारा ये एटीट्यूड है, अजीब गरीब किस्म का, यानी फ्रस्ट्रेशन गोया के होने लगती है कभी, कि कुछ लोग हैं ना वो इस तरह से दीन को इस तरह से ट्रीट करते हैं, यहाँ तो जी बस कोई अकल इस्तेमाल ही नहीं करनी, कोई खुद से जो है वो इनिशिएटिव लेना ही नहीं है, कोई खुद से जो है ना वो फिक्र करनी ही नहीं है, राइट, बस जो है वो बताएंगे तो कर लेंगे, राइट, क्या मतलब? अब बाकी कामों के अंदर ऐसे ही करते हैं कि ऊपर से कोई बताएगा तब आप काम करेंगे। भाई खुद से भी एक ड्राइव होती है ना, एक मोटिवेशन होती है ना, एक अर्ज होती है ना। कम से कम आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप पूछ तो सकते हैं ना कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन नहीं, दीन के काम में तो बस ऐसे जो है ना वो धोखा होता है असल में। ये खाली ये सिर्फ ड्रामे होते हैं असल में, हकीकत इसमें कोई नहीं होती है, ये भी सिर्फ ड्रामे होते हैं। जो पूछने की चीज होती है उसमें पूछते नहीं है, और जो नहीं पूछने की चीज होती है ना उसमें पूछ रहे होते हैं, जतलाने के लिए कि देखो हम तो पूछ के काम करते हैं, राइट, हम तो पूछ के काम करते हैं, ठीक है ना। और करना वही होता है जो अपनी मर्जी होती है। बहरहाल ये सब तो तमाशे हैं, बस अल्लाह ताला तो बेहतर जानते हैं ना। अल्लाह ताला अकल सलीम अता फरमाए। अगर बड़े नेक दिली के साथ ये काम कर रहे हैं तो अकल सलीम की जरूरत है, अल्लाह ताला से मांगनी चाहिए। बहरहाल तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अकल से ये तय कर लिया कि बस मैं तो जिसको सुना रहा हूँ उसको आवाज आ रही है, ठीक है। और अभी सुनिए ना आगे आ रहा है। तो अच्छा, फिर नबी अलैहिस्सलाम ने अच्छा कहाँ पढ़ रहे थे, मुझे जिसको सुनाना था उसको सुना दिया, क्योंकि अल्लाह ताला तो हर खफी से खफी आवाज को भी सुनते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी कदर जहर से पढ़ा करो, किसी कदर जहर से। किसी कदर जहर का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा, यानी जिसको कहते हैं ना आपके अपने कान जिसको सुन सके, ठीक है ना, इतना आप पढ़ा करें। ये तहज्जुद की नमाज की बात हो रही है, ठीक है ना, जिसको कि कम से कम आपके अपने कान सुन सकें। ये मर्दों को तहज्जुद की नमाज में तिलावत का तरीका बताया जा रहा है। देखिए गौर से सुने, नोट डाउन कर लें, मर्दों को, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला जो है वो मर्द हैं, उनको तिलावत का तरीका तहज्जुद की नमाज में बताया जा रहा है। यानी तहज्जुद की नमाज, जैसे पिछली लाइन में हमने पढ़ा था कि ये भी जहरी नमाज है मर्दों के लिए, कल की क्लास में ये बात हुई थी, औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए जहरी नमाज है, ठीक है ना। मगरिब, इशा, फजर और तहज्जुद, ठीक है, तो इनके अंदर जहरी नमाज, इनके अंदर जहरी तिलावत, यानी अ लिटिल लाउड, अ लिटिल लाउड, सम वॉट लाउड, कि कम से कम आपके कान सुन सकें, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने ओवर रूल कर दिया हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु के अकल के फैसले को, नबी अलैहिस्सलाम ने ओवरराइड कर दिया, ओवर रूल कर दिया कि नहीं, इस मामले में आपकी अकल नहीं चलेगी। आप बेशक सिद्दीक अकबर हैं, आप बेशक जो है वो बड़े अकलमंद और बड़े जो है वजीर शऊर हैं, लेकिन दिस इज नॉट वन ऑफ दोज थिंग्स कि जिसके अंदर आप अपने अकल से फैसला कर सकते हैं, ये जो है वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है आपने, ठीक है ना। ये मुरब्बी ये करता है, ठीक है ना, ये जो ट्रेनर होता है, ये जो मुरब्बी होता है, जो शेख होता है, वो ये करता है, ठीक है। आप अपनी अकल इस्तेमाल करें, बहुत अच्छी बात है, अकल आपको इस्तेमाल करने के लिए ही दी गई है, लेकिन नॉट इन एवरीथिंग, हर काम के अंदर नहीं। बहुत से ऐसे काम होंगे जिनके अंदर आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू, ठीक है जी, क्लियर है, इसको तरबियत कहते हैं। फिर हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि आप इतनी बुलंद आवाज से क्यों पढ़ते हैं, तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने अर्ज किया कि मैं नींद और शैतान को दफा करने के लिए बुलंद आवाज से पढ़ता हूं, नींद और शैतान को दूर भगाने के लिए बुलंद आवाज से पढ़ता हूं। ये भी मखलूक को सुनाने के लिए बुलंद आवाज से नहीं पढ़ रहे थे कि लोगों को पता चले कि मैं तहज्जुद पढ़ रहा हूं, जागा हुआ हूं इस वक्त में, और जो है वो मैं नमाज पढ़ रहा हूं और तिलावत कर रहा हूं। लोगों को सुनाने के लिए नहीं जोर आवाज से पढ़ रहे थे, बल्कि शैतान को भगाने के लिए, क्योंकि जब وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, ताकि तुम्हारे ऊपर रहमत नाजिल हो, राइट, कुरान की जब तिलावत की जा रही हो, तो कुरान की जब तिलावत की जा रही होती है तो रहमत नाजिल हो रही होती है। क्या मतलब? रहमत जो है वो किसी पानी के कतरे का नाम नहीं है, बल्कि रहमत अल्लाह ताला अपने फरिश्तों को नाजिल करते हैं, रहमत वाले फरिश्तों को, वरना फरिश्ते अजाब वाले फरिश्ते भी होते हैं, फरिश्ते जो है वो रिस्क पहुंचाने वाले फरिश्ते भी होते हैं, फरिश्तों के और भी काम होते हैं, लेकिन एक होते हैं रहमत वाले फरिश्ते। तो तो ये जो रहमत वाले फरिश्ते जब नाजिल हो रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली कॉन्सिक्वेंटली शैतान वहां पे रह नहीं सकता, शैतान वहां से भागता है। ठीक है, तो इनको नबी अलैहिस्सलाम से ये बात पहले पता चल चुकी होगी कि भाई कुरान की तिलावत के बाद शैतान भागता है, तो उन्होंने कहा मैं और जोर से तिलावत करूं, जहां जहां तक आवाज जाएगी वहां वहां तक शैतान जो है वो भागेगा। ठीक है, ये कोई मामूली आदमी कोई थोड़ी थे, ये तो उमर फारूक रहता थे जिनके बारे में नबी ने सर फरमाया कि उमर जिस रास्ते से गुजर जाता है शैतान उस रास्ते को अवॉइड करके दूसरे रास्ते से गुजरता है, उस रास्ते को अवॉइड कर देता है जहां से उमर गुजर जाते हैं। ठीक है, यानी उमर रहता जो है ना वो ऐसे शैतान के ऊपर भारी थे, ऐसे सख्त शैतान के ऊपर। क्यों सख्त है, क्यों भारी थे शैतान के ऊपर? क्योंकि अल्लाह के दीन की मदद में, अल्लाह के दीन की मदद करने में उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे ना वो सबसे बड़े हुए लोगों में से, बड़े हुए लोगों में से सबसे पहले सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे नंबर पर हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु। ठीक है ना, तो जो दीन की मदद करेगा वो शैतान के लिए क्या कहते हैं हलक का कांटा बन जाएगा, वो शैतान के लिए जो है वो यानी मुसीबत बन जाएगा जो अल्लाह के दीन की मदद करेगा। ठीक है, तो एक तो शैतान को दफा करना और दूसरी चीज क्या, नींद को दफा करना। अब ये नींद क्या चीज है, ये नींद एक नेचुरल रिक्वायरमेंट है इंसानी बदन की। अल्लाह ताला ने जो निजाम बनाया हमारे बदन का और हमारे इस दुनिया का, उसके अंदर नींद को जो है ना वो एक बड़ी अहम मकाम दिया। ठीक है ना, वजाल लैला नहारा वजाल क्या है वो वजाल लैला लिबासा। ठीक है ना, यानी रात का जिक्र करते हुए कि रात जो है ना वो लिबास की जैसी चीज है। ठीक है, तो रात में जो है वो चीजें ढप जाती हैं, जैसे लिबास ढांप लेता है चीजों को, उसी तरह से रात जो है वो ढांप लेती है। उस वक्त जो है ना वो सोने का टाइम होता है, जिस वक्त अल्लाह ताला की तरफ से अंधेरा हो जाता है, यानी सूरज जो है वो छुप जाता है, जमीन की दूसरी तरफ जो है वो रोशनी कर रहा होता है, हमारी जहां पर रात हो रही होती है वहां पर सूरज नहीं रोशनी कर रहा होता। अब वो टाइम क्या है, वो है सोने का वक्त, और हमारे बदन की रिक्वायरमेंट है कि हम सोएं। ठीक है, तो सोना जो है ना ये कोई यानी ये कोई ब्लेम वर्दी चीज नहीं है, ये कोई गुनाह का काम नहीं है सोना। अगर बदन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से सोया जाए तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है ना, आप अल्लाह के निजाम से टकरा नहीं सकते, अल्लाह के निजाम से नहीं टकरा सकते। अगर टकराएंगे अल्लाह के निजाम से तो नुकसान उठाए बगैर रह नहीं सकते। ठीक है ना, तो एज अ रूल, बिकॉज एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा, जैसे हमारे हजरत हैं सोते ही नहीं है, राइट, लेकिन वो एक्सेप्शंस हैं, आप उसको रूल नहीं बना सकते। हम अपने आप को उनके ऊपर कयास नहीं कर सकते कि जी हजरत नहीं सोते तो हम भी नहीं सोएंगे, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। कोई इस किस्म की गलत फहमी में मुबतला ना हो कि जी हजरत जी नहीं सोते तो मैं भी नहीं सोऊंगी, नहीं। ठीक है ना, आपको अल्लाह ताला ने अलग बनाया है, आपके अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी अलग जिम्मेदारी है, आपका अलग माहौल है, आपके बदन की अलग जो है वो जरूरियात हैं। ठीक है, तो आप सोएं जितना आपके बदन की मेडिकल नीड है, अगर खुद समझ में नहीं आ रहा कि मेरे बदन की कितनी मेडिकल रिक्वायरमेंट है नींद की, तो आप मालूम करें, डॉक्टर साहब से पूछें, अपने किसी जानने वाले कोई डॉक्टर होंगे हकीम होंगे उनसे पूछें कि मेरे जैसे बंदे को जो है वो कितना सोना चाहिए। ठीक है, टू 6 to 7 to 8 hours, 6 किसी की रिक्वायरमेंट, किसी की बॉडी नीड होती है, किसी की 7 होती है, किसी की 8 होती है। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं होती है। आम 20 20 एंड अबव कि जो है ना फिर नींद जो है वो थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, इससे कम अगर सोएंगे ना, जी आपने क्या लिखा है 6 या 7 घंटा सोना जिस्म की जरूरत है, तो अगर हम कम करें नींद को तो बुरा असर पड़ेगा। है? आपने वही बात होता है, लोग जो है वो पढ़ लिख करके फिर वो झक मार रहे होते हैं, तो झक मारने वालों में से नहीं बनना चाहिए हमें। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी है, आपको तो मैं जानता हूँ कि भाई ये बॉडी की नींद नीड होती है, और ये क्या कहते हैं डायबिटीज के बारे में तो बहुत डॉक्टर से ही सुना है ये डायबिटीज के बारे में, कि ये जो टाइप 3 और टाइप 2 पता नहीं कौन से होते हैं, ये टाइप 2 शायद, ये नींद की कमी की वजह से होता है, ये चीनी आप हाँकने की वजह से नहीं होता, ये नींद की कमी की वजह से डायबिटीज का मर्ज होता है, ठीक है। और ये ऐसा मर्ज है कि लोग कहते हैं कि किसी को बद्दुआ देनी है ना, तो उसके लिए बद्दुआ ये दो कि उसको डायबिटीज हो जाए, शुगर की बीमारी हो जाए। ये बद्दुआ इतनी खतरनाक बीमारी होती है, यानी इंसान की जिंदगी जो है ना वो ऊपर की नीचे नीचे की ऊपर हो जाती है इतना, ठीक है। तो बहरहाल, तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला जो है उनको नींद आती थी, ये असल में मकसद था यहाँ पे कहने का। ये नहीं है कि उमर फारूक बन गए तो अब नींद वींद कोई नहीं आती, अब इनको नींद आती थी। अब जो है वो तहज्जुद की नमाज के वक्त में उठ जाते थे, लेकिन नींद आ रही होती थी उसको कुरान की तिलावत के जरिए से भगा रहे होते, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको भी कहा कि कुछ पस्त आवाज से पढ़ा, ठीक है ना, ये जो तुमने अपनी अकल से फैसला कर लिया है कि मैं कुरान जितना जोर से पढ़ूंगा ना तो ये नींद को भगाने का बड़ा अच्छा तरीका है, तुम्हारी अकल ने तुम्हें ये समझा दिया है वाली बात, लेकिन नहीं, ठीक है ना, तुम्हारी अकल यहाँ पे भी उसी तरीके से गलत फैसला कर रही है जैसे कि तुम्हारे साहिब ने एक फैसला ऐसा किया था जिसको कि मैंने प्रूव नहीं किया, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, तुम कुछ पस्त आवाज से पढ़ोगे, नींद भगाने के और भी तरीके हैं, मुंह के ऊपर पानी डाल लेना, राइट, और कोई हवा के दौराहे के ऊपर खड़े हो जाए जहाँ पे हवा गुजर रही हो, जैसे ड्राइव करते हुए अगर बहुत ज्यादा नींद आती है तो अगर मुमकिन है तो आप अपने गाड़ी के शीशे खोल लें तो जो हवा आती है ना अंदर, तो उससे भी जो है वो नींद भागती है, ठीक है। या अगर कुछ चुगने उगने का टाइम हो रोजे से अगर आप नहीं है तो थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह जो है वो साथ रख लें तो वो साथ में चुगते रहे, तो नींद भगाने का नमाज में तो आप ही नहीं कर सकते, लेकिन नींद भगाने के तरीके हैं और भी। तो नबी अलैहिस्सलाम ने तरबियत फरमाई, लेकिन एक बहुत अहम बात यहाँ पर ये भी नोट करें कि नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को अपने अपने हिसाब से काम करते हुए देखा, ठीक है, लेकिन जब तक उनसे खुद पूछ नहीं लिया कि तुम्हारा मकसद क्या था, आहिस्ता पढ़ने में आपका क्या मकसद था और जोर से पढ़ने में आपका क्या मकसद था, उस वक्त तक जो है वो उनको हुक्म नहीं फरमाया तब्दील करने का, ठीक है ना, अपना तरीका तब्दील करने का हुक्म नहीं फरमाया, ठीक है। तो मुरब्बी के लिए ये भी एक बहुत अहम बात है कि हर सर्कमस्टेंस में आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले जो है वो आप अक्सर, तो मुरब्बी जो होता है वो इतना उसका पर्सनलाइज ताल्लुक होता है और इतना जो है वो क्लोजली मॉनिटर कर रहा होता है, वॉच कर रहा होता है अपने मुरब्बा साहब को, राइट, या साहिबा को, यानी अपनी औलाद को या अपने स्टूडेंट्स को इतना क्लोजली वो जानते हैं कि उनको अच्छा खासा अंदाजा पहले से ही होता है कि ये फलाना काम क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से हर सिचुएशन में ऐसा नहीं होता कि पहले आप जो है वो रीजन पूछें फिर उसके बाद जो है वो आप ऑल्टरनेटिव रास्ता बताएं, लेकिन कभी ऐसा होता है और ये करना चाहिए कि अगले बंदे से अगर आप कोई गलती होती हुई देख रहे हैं ना तो पहले उससे क्लेरिफिकेशन पूछ लें, लेट देम एक्सप्लेन देमसेल्व्स, राइट, लेट देम एक्सप्लेन देमसेल्व्स एंड लिसन टू देम फर्स्ट, पहले उनको सुने, उनकी एक्सप्लेनेशन को सुने, ठीक है ना, और फिर उनकी एक्सप्लेनेशन को अगर आप गलत पाएं क्योंकि आपका इल्म ज्यादा है, आपका तजुर्बा ज्यादा है, तो अपने तजुर्बे और अपने इल्म की रोशनी में अगर उनकी ये जो एक्सप्लेनेशन है उसको आप गलत पा रहे हैं तो उनकी इसलाह कर दें, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने अपने दो वजरा की इसलाह फरमाई। ये दोनों वजीर थे ना नबी अलैहिस्सलाम के, वजीर क्या होता है, वजीर किसको कहते हैं जी, बताएगा कोई, जब तक इन्होंने मर्दों में क्या सवाल किया है कि हजरत क्या कम से कम 2 रकअत तहज्जुद के पढ़ सकते हैं, जी हाँ 2 पढ़ सकते हैं, 4 मुमकिन हो तो 4 पढ़ें, बस इतना ही आजकल के लिए काफी है, वरना नबी अलैहिस्सलाम 8 पढ़ा करते थे लेकिन 2 ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। वजीर क्या करता है, इन्होंने लिखा मुशीर, मशवरे देता है, तो मशवरे तो आजकल सभी देते हैं, वजीर का क्या काम होता है, नायब होते हैं, खलीफा होते हैं, हेल्पर होते हैं, हेल्पर, हेल्पर का जो जवाब है ना ये सबसे ज्यादा करीब है, ठीक है। अरबी जुबान की शुद्ध बुद्ध रखने वाले उनको तो ज्यादा पता होना चाहिए था कि वजीर क्या चीज होती है, कुरान मजीद जानने वाले हुँ? वला तजिरु वाजिरतु विजरा उखरा, विजर का लफ्ज कुरान मजीद के अंदर, ठीक है जी, मर्दों में सही जवाब आया, बोझ उठाने वाले, राइट, बोझ में हेल्प करने वाले, काम में मदद करने वाले। बोझ, जब कोई जिम्मेदारी डाली जाती है ना किसी के ऊपर, तो ये जिम्मेदारी एक बोझ होती है, ठीक है। खिलाफत की जिम्मेदारी, नयाबत की जिम्मेदारी, राइट। कोई बहुत बड़ा टास्क, कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट असाइन किया गया, ये बोझ होता है। वजीर कौन होते हैं? जो कि बोझ उठाने में मदद करें, राइट। इसी वजह से उसको वजीर कहते हैं। खादिम खाली नहीं, खादिम तो वो होता है जिसको कि सैलरी दी जाती है, तनख्वाह दी जाती है, तो वो अपनी तनख्वाह की वजह से काम कर रहा होता है, राइट। तो खादिम टेक्निकली एक्चुअली वजीर नहीं होता, वजीर तो वो होता है जो कि सेल्फ मोटिवेशन के साथ, राइट, वो काम के अंदर मदद करे, वो खादिम नहीं कहलाता। तादीबन वो अपने आप को कह सकते हैं, मैं तो जी आपका खादिम हूं, मैं तो जी आपका गुलाम हूं, लेकिन ये तो अखलाकी एतबार से जो है वो कह दिया जाता है। लेकिन खादिम की जो टेक्निकल डेफिनेशन है वो है कि कॉम्पेंसेशन के अगेंस्ट जो काम कर रहा होता है ना, एक कॉम्पेंसेशन मिलती है, तनख्वाह मिलती है, उसके बदले में वो काम कर रहा होता है, दिस इज व्हाट अ खादिम इज। गुलाम की अलग तारीफ है, गुलाम को कोई तनख्वाह नहीं मिल रही होती, गुलाम बस काम कर रहा होता है, बस काम कर रहा होता है, उसकी अपनी कोई से नहीं होती, ये गुलाम की डेफिनेशन है। वजीर की अलग डेफिनेशन, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम, अच्छा ये भी हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे कि ये दोनों वजीर थे, नबी रसूल ने खुद फरमाया कि मेरे दो वजीर आसमानों में हैं और मेरे दो वजीर जमीन में हैं। और जब अरब, नबी अलैहिस्सलाम जैसे फसीह और बलीग अरब जब अरबी का कोई लफ्ज बोलते हैं तो उसके माना मुराद होते हैं, उनको पता होता है कि मैं किस मानी में यह लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। तो वजीर का लफ्ज जो है वो मेरा बोझ उठाने में मेरी मदद करने वालों के मानी में नबी अलैहिस्सलाम ने यह लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। हम तो वजीर बोलते हैं, हमें पता भी नहीं होता वजीर का मतलब क्या है, हम ऐसे ही बोल रहे होते हैं वजीर, है ना। जैसे आप लोगों से पूछा तो आप लोगों को तो नहीं पता था, अल्लाह ये कि किसी ने याद रखा था कि वजीर का मतलब पहले समझाया गया है, तो उन्होंने जवाब सही दे दिया, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया। तो का मतलब ये है कि भाई अल्लाह ताला ने इस उम्मत में, नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत में ये तरीका जारी फरमा दिया, पिछली उम्मतों में ये तरीका जारी नहीं फरमाया था कि नबी के साथ उनके हेल्पर्स होते थे, ठीक है ना, जो कि उनके काम को संभालते थे उनके साथ मिल करके, और फिर वो उनके काम को आगे बढ़ाते थे, जो कि नबी खुद नहीं होते थे। पिछली उम्मतों में ऐसा नहीं होता था, पिछली उम्मत में हर नबी खुद अपना बोझ उठाता था, हर नबी खुद अपना बोझ उठाता था, और फिर उनके जाने के बाद दूसरा नबी उसी बोझ को उठा रहा होता था, फिर वो नबी चला जाता था, तीसरा नबी आता था वो फिर बोझ को उठा रहा होता था, चौथा नबी आता था वो फिर बोझ को उठा रहा होता था। ये पिछली उम्मतों का तरीका है। नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत का क्या तरीका है कि अब ये वाला काम गैर नबी का करेंगे, ये वाला काम सहाबा, ठीक है। तो सहाबा ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर के बोझ को उठाया, राइट, और ये इस दीन के फिर इस्तेकामत का जो है वो सबब अल्लाह ताला ने इसको बनाया, ठीक है। तो ये नहीं किया कि नहीं अल्लाह के नबी आप करें जो करना है, क्योंकि आप है ना अल्लाह के नबी, अल्लाह ने मुझे तो नबी नहीं बनाया, है ना, ये दिस इज नॉट माई फॉल्ट, जैसे हमारा एटीट्यूड इस तरह रहता है ना, ये मेरा फॉल्ट तो नहीं है कि अल्लाह ने मुझे नबी नहीं बनाया, आपको नबी बनाया, अब आप जाने आपका काम जाने, आप खुद ही करें जो आपने काम करना है, मैनू की, पंजाबी में कहते हैं मैनू की, मुझे क्या भाई, मेरा तो काम है खाना खाना, राइट, मैं तो फ्रूट्स को एंजॉय करूंगा, जैसे यहूदी है ना वो फ्रूट्स को एंजॉय करने के लिए आए थे ना मदीना मुनव्वरा में, ठीक है ना। ये यहूदी जो है, अब हमारी क्लास ऐसी चलती है, ठीक है, जिनको अंदाजा है उनको अंदाजा है, जिनको नहीं है उनको हो रहा होगा अंदाजा, हमारी क्लास में ऐसे ही टेंजेंट चलते हैं। तो फ्रूट खाने से बात याद आई कि ये जो यहूदी थे, पता होगा ना इंशाल्लाह सबको कि ये मदीना मुनव्वरा में क्यों आकर के ठहरे थे, कि अल्लाह के आखिरी नबी आएंगे, है ना, अल्लाह के आखिरी नबी आएंगे फिर जो है ना वो हम उनके उम्मती बन जाएंगे, हम उनके ऊपर ईमान लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके ऊपर मशायख ने सवाल उठाया, इल्मी सवाल, कि ये इनको तो ये भी पता था कि अल्लाह के नबी मक्का मुकरमा में आएंगे, ये भी उनको पता था, पैदाइश तो मक्का मुकरमा में होगी, और ये भी उनको पता था कि मदीना मुनव्वरा में जहाँ पे खजूर के बागात होते हैं, जहाँ पे ओहद का पहाड़ होता है, जहाँ पे ऐसा जो है वो नखलेसान होता है, वहां पर वो हिजरत करके आएंगे, ठीक है ना। तो ये यहूदी जो हैं ये मक्का मुकरमा क्यों नहीं गए, राइट? इतनी तफसील उनको पता थी कि उमर फारूक कैसे लगते होंगे और दूसरे सहाबी कैसे लगते होंगे, तो इनको ये नहीं पता था कि मक्का मुकरमा में नबी अलैहिस्सलाम की बेइज्जत होगी और 13 साल तो नबी अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा में रहेंगे, तो ये मक्का मुकरमा क्यों नहीं सेटल हो जाकर। जिनको पता है वो अगर दूसरों को मौका दें इसका जवाब, इसका जवाब क्या है कि वो मदीना मुनव्वरा में क्यों आकर के सेटल हुए, मक्का मुकरमा में क्यों नहीं सेटल हुए। हजरत क्या हवारीयीन ईसा अलैहि सलाम उनके हेल्पर्स नहीं थे। हवारीयीन जो है ना वो ईसा अलैहि सलाम के हेल्पर्स नहीं थे, वो उनके साथ रहने वाले लोग थे, ठीक है, साथ रहने वाले। वो सहाबा, देखें सहाबा की जो डेफिनेशन है ना, तो हर नबी के साथ जो गैर नबी होते हैं वो सहाबी होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये नहीं है कि सिर्फ नबी अलैहि सलाम सहाबी थे, सहाबी तो नूह अलैहि सलाम के साथ जो ईमान वाले थे वो भी नूह अलैहि सलाम के सहाबी थे, मूसा अलैहि सलाम के साथ जो ईमान वाले थे वो मूसा अलैहि सलाम के सहाबी थे, और ईसा अलैहि सलाम के साथ जो ईमान वाले थे वो ईसा अलैहि सलाम के सहाबी थे, ठीक है ना। लेकिन बाकायदा बोझ उठाना, ये जो लफ्ज वजीर है ना, ये उनके लिए इस्तेमाल नहीं होता था। हवारीन जो है ना वो वजीर के मानी में नहीं आता, ठीक है, सहाबी के मानी में आए, सही। अच्छा, बागात की वजह से वो उनको खजूर खाने का शौक था, खजूर अच्छी लगती थी, इस वजह से मदीना मुनव्वरा में सेटल हुए थे। मक्का मुकरमा में खजूरें नहीं मिलती थी, इस वजह से मदीना मुनव्वरा सेटल नहीं हुए थे। अच्छा, यहाँ पे क्या जवाब लिखा है कि मक्का मुकरमा में काबतुल्ला है, इस वजह से, जबरदस्त आपने वजह बनाई है वैसे, माशाल्लाह। मक्का में मेहनत नहीं करना चाहते थे, ठीक है जी। उनको हिजरत के बारे में भी मालूम था, तो उन्होंने 13 साल इंतजार क्यों किया, वो तो कई सौ साल पहले जो है वो आके ठहर गए थे ना यहाँ पर, तो पहले से उन्होंने प्लान किया हुआ था कि 13 साल के बाद ही हम नबी से मिलेंगे, तो 13 साल की तो जिंदगी का भी किसी को नहीं पता, पता चला मर गया नबी अलैहिस्सलाम के आने के बाद जो है वो 13 साल जो आप वेट करते रहे, तो इसमें किसी की मौत हो गई तो वो तो नहीं मिलेगा नबी से, है ना। तो ऐसी उन्होंने प्लानिंग करी थी, हरगिज नहीं, ठीक है जी। तो सही जवाब जो है ना वो यही है जो कि आप में से चंद ने दिया भी है, और मर्दों में भी में जवाब आया है कि मुनासिब और मददगार हालत में, साजगार हालात में वो मिलना चाहते थे नबी अलैहिस्सलाम, क्योंकि उनको पता था कि मक्का मुकरमा में जो है ना वो तकलीफों का दौर है, वो तो खालिसतन आजमाइशों का और अजियतों का दौर है, उस वक्त कोई सिस्टम कोई थोड़ी इस्टेब्लिश होगा मक्का मुकरमा के अंदर, राइट। उस वक्त जो है वो रियासत मदीना कोई थोड़ी इस्टेब्लिश होगी मक्का मुकरमा के अंदर, वहां पे तो सिर्फ पिटाई है, वहां पे तो सिर्फ जो है ना वो तकलीफें और अजियतें हैं। मदीना मुनव्वरा में भी थोड़ी सी तकलीफें और अजियतें चलती रहेंगी, जंगें भी चलती रहेंगी, लेकिन वहां पर एक निजाम कायम हो चुका होगा, बालादस्ती हासिल हो चुकी होगी, जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम को मदीना मुनव्वरा में आते के साथ ही बालादस्ती हासिल हो गई, राइट, अमीर सल्तनत बन गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है ना। तो दे डिड नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू द ट्रबल ऑफ मक्की दौर, दे डू नॉट वॉन्ट टू गो थ्रू द ट्रबल, दे वॉन्टेड टू जस्ट रीप द फ्रूट्स ऑफ द ट्रबल दैट समवन एल्स डिड, राइट। कि ये जो मक्का मुकरमा के लोग हैं ना, इन्होंने जो तकलीफें बर्दाश्त करी, जो इन्होंने आजमाइशें सही, इन्होंने अब उसके जो फल मिलेंगे ना, अब जो उसके फल मक्का मदीना मुनव्वरा के अंदर मिलेंगे, हम वो फल खाएंगे। ये जो एटीट्यूड है ना, हम क्यों ये सारी बातें करते हैं, ये कुरान, ये सुन्नत, ये क्या है, ये कहानी किताबें, राइट, ये कहानी और किस्से, बस इसके लिए हम अपनी इबरत के लिए ना, कि हम तो नहीं वही वाली हरकत कर रहे हैं जो यहूदियों ने करी थी, कि हम भी बैठ करके जो है ना वो पुलाव और बिरयानी और इसके अंदर हमारा इंटरेस्ट है खाली, काम हम कोई नहीं करना, हमने बोझ हमने कोई नहीं उठाना, राइट, मदद हमने कोई नहीं करनी, दीन के फायदे उठाएंगे। दीन के फायदे क्या, बच्चे जो है ना वो हमें थप्पड़ नहीं मारा करेंगे, अगर हमारे बच्चे दीनदार बन जाएंगे शेख साहब उनको दीनदार बना देंगे, मौलाना साहब जो है वो हमारे बच्चों को जो है वो नेक बना देंगे, अब ये हमारे बच्चे जो है ना वो हमें उस तरह से अबैंडन नहीं कर देंगे बुढ़ापे में, जैसे दुनियादारों के बच्चे अबैंडन कर देते हैं उनको, राइट, ये हमारे बच्चे हमारी खिदमत किया करेंगे, ये हमारे बच्चे जो है ना वो हमारा लिहाज करेंगे, और ये फलाना नहीं करेंगे, ढिमकाना नहीं करेंगे, है, तो ये क्या है, दीन पे खुद कोई अमल नहीं करना, बच्चे नेक बन जाएं, और वो भी खाली कौन से वाले नेक, माँ बाप के साथ अच्छे वाले नेक, ठीक है ना, खुद कुछ नहीं करना, खुद नेक नहीं बनना, ये एटीट्यूड किसका एटीट्यूड है, ये यहूदियों का एटीट्यूड है, राइट, ये यहूदियों का एटीट्यूड है, जो कौन है, मग़ज़ूब अलैहिम, सूरह फातिहा के अंदर दुआ क्या मांगते हैं, ग़ैरिल मग़ज़ूब अलैहिम, ठीक है, तो ये मग़ज़ूब लोगों का एटीट्यूड है, हमें इससे तौबा कर लेनी चाहिए, अल्लाह ताला माफ कर देते हैं तौबा करने के ऊपर, करें तो ना पहले तौबा, और तौबा करने का मतलब ये होता है कि अपने प्रीवियस एटीट्यूड के ऊपर नादिम हो और शर्मिंदा हो, और अल्लाह ताला से दिल में इरादा करें, अल्लाह ताला को बताएं दिल के अंदर अपने, अल्लाह ताला दिलों का हाल जानते हैं, जुबान से भी कहने की जरूरत नहीं है, दिल में बताएं कि अल्लाह आई एम सॉरी फॉर व्हाट आई हैव डन, आई एम सॉरी फॉर व्हाट हैज बिन माय एटीट्यूड टुवर्ड्स योर दीन, ठीक है ना, प्लीज फॉरगिव मी एंड आई प्लेज दैट आई विल नॉट कंटिन्यू ऑन दिस पाथ एनी मोर, मैं आगे ये काम नहीं करूँ, आगे ये काम नहीं करूँ, इसको तौबा कहते हैं, इसके ऊपर माफी मिल जाती है, ठीक है, यहां भी यहूदियों ने होशियारी और चालाकी से काम लिया, माशाल्लाह उन्होंने पूरी आयत ही नकल फरमा दी है, अबू सईद खुदी फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई नहीं ऐसा, कोई नबी ऐसा नहीं जिसके दो वजीर आसमान में से ना हो और दो वजीर जमीन वालों में से ना हो, है ना, ना हो रहे, क्या है, मेरे दो वजीर आसमानों में से हैं तो वो जिब्राइल और मीकाईल सलाम है, और जमीन में से मेरे दो वजीर अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा हैं। अच्छा एक मिनट, मा मिन नबीन इल्ला लहू वजीरुन वजीरान मिन अहले समाई वजीरान मिन अहले अर्ज़ी व अम्मा वजीराई मिन अहले समाई जिब्रील, तो हर नबी का, इस हदीस के मुताबिक तो जो आपने यहाँ पे नकल करी है कि हर नबी के दो वजीर दुनिया के अंदर भी होते थे, ठीक है, तो अब पिछले वजीरों का वैसे कोई जिक्र हमें यानी अलग से नहीं मिलता कि फलाने फलाने लोग जो है वो नबी के वजीर होते थे, आमतौर पर जो है वो बस सहाबी का ही जिक्र मिलता है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम के दो वजरा को तो हम जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि ये जो दो वजीर थे ये गोया के यानी मोस्ट सीनियर वजीर थे, वरना तो हर सहाबी ने नबी अलैहिस्सलाम के बोझ को उठाने का काम किया है, ठीक है, तो हमारे मशाइख को जो है ना जैसे हमारे हजरत अक्सर ये वाला शेर पढ़ा करते हैं, पहले पढ़ते थे, अब इतना तो उम्र का वो हिस्सा आ गया है, कि हमें ऐसा नहीं होना चाहिए अपने मशाइख के साथ अपने बड़ों के साथ कि उनको जो है ना वो ये शेर पढ़ना पड़े अपनी हालत को बयान करने के लिए, कि हाले दिल जिससे मैं कहता कोई ऐसा ना मिला, हाले दिल जिससे मैं कहता कोई ऐसा ना मिला, बुत के बंदे तो मिले अल्लाह का बंदा ना मिला, बुत के बंदे का क्या मतलब होता है कि जो हाँ बस सिर्फ अपनी दुनियावी फायदे ही देख रहे होते हैं, सिर्फ अपने जो है ना वो मादी फायदे ही देख रहे होते हैं, और उनको अल्लाह की बंदगी और अल्लाह को राजी करने से कोई खास गर्ज नहीं होती, बस ऊपर ऊपर से गर्ज होती है, तो अब ऐसे जो लोग होते हैं ना उनके साथ फिर आप अपने दिल का गम शेयर नहीं कर सकते, उनके साथ मिलकर के आप काम नहीं कर सकते, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे दीन के काम हैं जो कि हमारे मशाइख करना चाहते हैं लेकिन वो कर नहीं पाते हैं, करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि लोग साथ नहीं दे रहे होते, लोग जो है ना वो मसले को समझ ही नहीं रहे होते हैं, उनको सिचुएशन का इदराक ही नहीं हो रहा होता क्योंकि वो गम शेयर नहीं कर रहे होते, क्योंकि वो उस थिंकिंग को, उस फिक्र को, उस सोच को जो है ना वो इनहेरिट नहीं कर रहे होते अपने मशाइल से, बस ऐसे ही जो है ना वो साथ साथ लग जाते हैं ज्यादा से ज्यादा, साथ उठना बैठना और बयान सुनना या खाने पकाना, इस तरह भी ज्यादा से ज्यादा चीजें कर लेते हैं, लेकिन दिल का गम नहीं शेयर कर रहे होते। तो इस वजह से ना बहुत सारे दीन के काम हैं जो कि हम कहते हैं क्यों नहीं होते, वो क्यों नहीं करते, उन्होंने ऐसे क्यों नहीं किया, उन्होंने वैसे क्यों नहीं किया। भाई तो वो क्यों नहीं हो रहे होते, क्योंकि वो एक मॉडल के अंदर होंगे। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम सहाबा का मॉडल था, अल्लाह ताला ने मॉडल बनाया, वो मॉडल होगा तब वो काम होंगे, और जब तक वो मॉडल नहीं बन सकेगा ना, यानी जब तक जो है वो मदद करने वाले ऐसे लोग शामिल नहीं होंगे, उस वक्त तक ऊपर वाले शेख साहब या ऊपर वाले जो है वो जो भी हैं बड़े, वो जितना ही चाहते रहें वो काम नहीं हो करके देगा। वजअल ली वजीरा मिन अहली हारून अखी, तो भाई हारून अलैहिस्सलाम तो खुद नबी थे ना, बात तो यहाँ पर हो रही थी गैर नबी की, ठीक है। तो हारून अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह ताला ने वजीर तो बनाया, लेकिन नबी बना करके वजीर बनाया, और नबी के ऊपर तो वही डायरेक्टली भी आ रही होती है, जब भी तो वो नबी बनते हैं, नबी और आम नबी में, गैर नबी में क्या फर्क है। बहरहाल अच्छा, नमाज और गैर नमाज में तिलावत कुरान को जहर से और इख्फा से अदा करने के मुतालिक मसाइल सूरह आराफ में बयान हो चुके हैं, आखिरी आयत यानी वो पीछे सूरह आराफ के अंदर, तो उसको फिर यहाँ पे कंक्लूड करके हजरत आगे फरमाते हैं कि आखिरी आयत कुल अल्हम्दुलिल्लाह के मुतालिक, ये जो सूरह बनी इसराइल की बिल्कुल आखिरी आयत है, इसके मुतालिक हदीस में है कि आयत इज्जत, ये इसको यानी आयत इज्जत को जो है वो लकब दिया गया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी से लेकर के आखिर तक। इस आयत में ये हिदायत भी है कि कोई इंसान कितनी ही अल्लाह ताला की इबादत और तस्बीह व तहमीद करे, अपने अमल को उसके हक के मुकाबले में कम समझना, अपने अमल को उसके हक के मुकाबले में कम समझना और कसूर का एतराफ करना उसके लिए लाजिम है, ठीक है। यानी अल्लाह ताला की मदद तो कोई नहीं कर सकता, अल्लाह ताला को किसी की मदद की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, हम अल्लाह ताला की तस्बीह बयान करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम उसकी तस्बीह बयान करें, तहमीद करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, ठीक है ना। तो ये हम अल्लाह ताला के हुक्म के ऊपर अल्लाह ताला के लिए करते हैं, अल्लाह ताला को इसकी भी जरूरत नहीं। लेकिन इतना करने के बावजूद भी अपने आप को ना कम समझना, अपनी इबादत को कम समझना, अपने कसूर का एतराफ करना, ये बंदे के लिए साथ साथ लाजिम है। यानी करना भी और डरना भी, डरना भी और करना भी। कर करके ये मत समझें कि बस अब तो मैंने हक अदा कर दिया, जैसे कि हमारे मशायख हजरत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से भी मंसूब ये है और दूसरे मशायख से भी, कि फरमाया करते थे खूब इबादतें करके, फरमाया करते थे मा अबदना का हक इबादतिक, इबादतिक मा अबदना का हक इबादतिक व मा अरफना का हक मारिफत, कि ए अल्लाह मैं आपकी इबादत नहीं कर सका जैसे कि उसका हक था, हक इबादत मैं अदा नहीं कर सका, और मैं आपकी मारिफत हासिल नहीं कर सका जैसे कि आपकी मारिफत हासिल करने का हक था, आपको पहचानने का, आपको जानने का हक था, नहीं कर सका मैं, ठीक है। तो करते भी रहना और साथ साथ जो है ना वो अपनी नफी भी करते रहना, मैं तो कुछ नहीं कर सका, मैं तो कुछ नहीं, बंदे को यही चीज सचती है, ठीक है। या उन्होंने पूछा कि आप क्या हजरत आसिया की शहादत के बारे में बता सकते हैं, उनकी औलाद थी, ये कोई मौका है हजरत आसिया की शहादत के बारे में बताने का, क्या ख्याल है आपको? सवाल अगर ठीक है, आपको पूछना था कि उनकी औलाद थी या नहीं थी, तो जवाब दे देंगे, भाई हमें तो नहीं मालूम कि उनकी कोई औलाद थी, ठीक है। बाकी ये कि इस वक्त हम सूरह बनी इसराइल की तफसीर को इख्तिताम करने के बजाय आसिया अलैहिस्सलाम की शहादत के बारे में बात करने, तो अजीब बात है वैसे, बड़े मजे की बात है। अच्छा, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बनी अब्दुल मुत्तलिब में जब कोई बच्चा जुबान खोलने के काबिल हो जाता तो उसको आप ये आयत सिखा देते थे, नबी अलैहि सलाम है ना, वो आयत सिखाते थे वही वाली, वकुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदं वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की वलम यकुल लहू वलीयुम मिन अज़्ज़ुल्ली वकब्बिरहू तकबीरा। ठीक है, अब हमारा बच्चा जो जुबान खोलने के काबिल होगा, जाहिर सी बात है उनका भी बच्चा फौरन तो नहीं शुरू हो जाता, जब उसने बातचीत करनी शुरू करी, जब उसने कलाम पढ़ना शुरू किया, अब वो अरब थे और अरबी जो है वो जल्दी पिकअप कर लेते थे, तो वो कम उम्र के अंदर ये आयत सीख लेते होंगे। हमारे बच्चे चारों तरफ जो है वो अंग्रेजी बोली जा रही है या उर्दू बोली जा रही है, तो उनको तो अरबी पिक करने के अंदर वक्त लगता है, लेकिन हम भी कम अज कम इतना तो कर सकते हैं कि अपने बच्चों को जब वो बोलना नहीं शुरू करता है उससे पहले ही उसको अल्लाह अल्लाह अल्लाह, राइट, अल्लाह का लफ्ज जो है ना वो उसके गिर्द इतना बोलें, इतना उसको सुनाएं कि उसकी जुबान से अल्लाह का ही लफ्ज पहला लफ्ज निकले। इसके ऊपर भी मशायख से सुना कि माँ बाप की मगफिरत होती है, कि जिस बच्चे का पहला लफ्ज जो है ना वो अल्लाह होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमने अपने हजरत से ये बात सुनी है, तो उसके बाद से अपने बच्चों के साथ भी और दूसरे बच्चों के साथ भी यही किया, दूसरे के दूसरों ने अपने बच्चों के साथ भी यही किया कि बच्चों के मुंह से पहला लफ्ज जो है वो अल्लाह ही निकला। अल्हम्दुलिल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाई। तो ये लफ्ज सबसे आसान लफ्ज है, किसी दूसरी लैंग्वेज का कोई लफ्ज जो है ना वो अल्लाह के लफ्ज का मुकाबला कैसे कर सकता है। ठीक है, ये तो परवरदिगार का इसमें ज़ात है, ठीक है, अदायगी के अंदर भी। इसके ऊपर तो बड़े लोगों ने रिसर्चेस भी करी हैं, बड़े जो है वो उसके बताए, ठीक है, मकाले भी लिखे गए हैं कि अल्लाह का लफ्ज है वो उसकी क्या एक खास शान है जो किसी और आवाज के अंदर नहीं, क्योंकि लफ्ज असल में आवाज होता है जो कि इंसान के मुंह से निकल रही होती है, किसी और आवाज के अंदर ऐसा आसानी और ऐसी जो है फायदे नहीं है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक रोज मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बाहर निकला, इस तरह कि मेरा हाथ आपके हाथ में था, आपका गुजर एक ऐसे शख्स पर हुआ जो बहुत शिकस्ता हाल और परेशान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया, यानी बहुत परेशान हाल उसको देख कर कि जैसे बीमार, तो यानी उस शख्स ने खुद ही बता दिया कि बीमारी और तंगदस्ती ने उसका ये हाल कर दिया, यानी माली तौर पर भी परेशान है और जिस्मानी तौर पर भी बीमारियों की वजह से परेशान है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें चंद कलिमात बतलाता हूँ, वो पढ़ोगे तो तुम्हारी बीमारी और तंगदस्ती जाती रहेगी। वो कलिमात ये थे, तवक्कल तो अलल अलल हय्य लजी ला यमूतु अल्हम्दुलिल्लाहि लजी लम यत्तखिज़ वलदं वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की इलल आखिर, है ना, यानी पूरी ये वाली आयत हो गई, लेकिन शुरू में तवक्कल तो अलल हय्य लजी ला यमूत, ठीक है ना, ये उसके अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐड किया। कुरान मजीद की आयत तो वही है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से जो है ना ये गोया के एक वजीफे के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबी को बताया। इसके कुछ अरसे के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तरफ तशरीफ ले गए, तो उसको अच्छे हाल में पाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशी का इजहार फरमाया, उससे अर्ज किया, तो उसने अर्ज किया कि जब से आपने मुझे ये कलिमात बतलाए थे मैं पाबंदी से उनको पढ़ता हूँ। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम जो हैं वो इलाज बतलाए करते थे, असल मकसद तो नबी अलैहिस्सलाम का रूहानी बीमारियों से इलाज बतलाना था। रूहानी बीमारियां होती हैं गुस्सा, शहवत, तकब्बुर, उजब, हिर्स, हसद, दुनिया की मोहब्बत, ये रूहानी बीमारियां, जादू टोना, ये रूहानी बीमारियां नहीं होती हैं, जिनको बहुत सारे हम लोग जो हैं वो रूहानी बीमारियां समझते हैं ना, जादू टोना, नजर लग गई, वो रूहानी बीमारियां नहीं होती हैं, वो जिस्मानी बीमारियां होती हैं, ठीक है ना, वो जिस्मानी बीमारियां होती हैं। रूहानी बीमारियां तो ये होती हैं जो कि रूह के अंदर पैदा होती हैं, जादू टोना वगैरह से जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा होती हैं, वो खालिसतन जिस्मानी बीमारियां होती हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम रूहानी बीमारियों का इलाज, यानी दुनिया की मोहब्बत का इलाज और हसद, हर्स, गुस्सा वगैरह का इलाज, ये बतलाना आपका असल मकसद है ज़िंदगी था, और फिर उसके बाद जो सेकेंडरी मकसद है ज़िंदगी था कि दूसरे मामलों में भी लोगों की तकालीफ को जो है वो उनके हल बतला देना। तो जिस्मानी बीमारियों और माली मसलों के भी नबी अलैहिस्सलाम जो है वो हल बतला दिया करते थे, तो उसी तरह से ये एक हल बतलाया। तो इसमें एक बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये है कि ये जो नबी अलैहिस्सलाम के जमाने के मोमिनीन थे ना, ईमान वाले, ठीक है, ये जो ईमान वाले लोग थे ये गुनाहे कबीरा नहीं किया करते थे। वो गुनाहे कबीरा नहीं किया करते, ठीक है। अगर कभी उनसे हो जाता था तो वो तौबा कर लिया करते, अगर कभी गुनाहे कबीरा हो जाता तो वो तौबा कर लिया करते। तो रूहानी बीमारियों का मसला तो पहले ही इन लोगों का हल हुआ होता था नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत की वजह से, आपसे सुन की तरबियत की वजह से, ठीक है। तो अब इनके यानी ये जो वजायफ है ना, ये वजायफ जो हैं ये होते हैं एड ऑन्स, एड ऑन्स, ठीक है। सबसे पहली चीज जो इंसान को चाहिए होती है, जैसे मिसाल के तौर पर जिस्मानी सेहत के बारे में अगर आप कहें, ठीक है ना, जिस्मानी सेहत के अंदर भी सबसे अहम चीज क्या होती है कि आपकी प्रॉपर आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए, प्रॉपर नरिशमेंट मिलनी चाहिए, ठीक है ना, प्रॉपर जो है वो माहौल मिलना चाहिए कि जहां पे वायरसेस एंड बैक्टीरियाज वगैरह ना हो, ठीक है ना, और आप जो है वो सही फूड खा रहे हो तो आपकी जिस्मानी सेहत जो है वो अच्छी रहती है, ठीक है। फिर जो है वो कभी कोई ऐसा मामला पेश आ जाता है, कभी कोई अल्लाह की मर्जी होती है कि आपको जो है वो एज एन एक्सेप्शन फिर भी बीमारी लग जाती है, ठीक है ना। तो अब उस बीमारी के लिए क्या चीज चाहिए होती है, भाई अच्छी गजा तो आप पहले भी खा रहे थे, अच्छे माहौल के अंदर तो आप पहले भी रह रहे थे, लेकिन जो आपको ये बीमारी लग गई तो उसके लिए फिर आपको तबीब के पास जाना होता है, तबीब जो है आपको दवा बता देते हैं, ठीक है ना, जो उन्होंने किसी जड़ी बूटी के जरिए से या किसी और जो भी जड़ी बूटियां बेसिकली होती हैं जिनको मिक्स करके जो है वो इवेंचुअली कोई ना कोई मेडिसिन वगैरह बना दी जाती है, ठीक है। तो चांद से तो नहीं कोई चीज लाई जा रही होती है ना जिससे जो मेडिसिन बनाते हैं, दुनिया की सारी प्रोडक्ट्स होती हैं जो दुनिया के अंदर ही उगती हैं, उन्हीं को किसी ना किसी प्रोपोर्शन में मिक्स करके केमिकल बनाते हैं, उसको इधर से मिक्स किया उधर से मिक्स किया, वो जो है वो कोई एक दवा बन गई। तो तबीब जो है वो फिर ऐसी सिचुएशन में जब आपको बीमारी हो जाती है तो आपको दवा भी बता देता है, तो उस दवा में अल्लाह ताला ने शिफा रखी होती है आपके लिए तो आपको शिफा मिल जाती है, ठीक है ना। ये है जिस्मानी दुनिया का मामला। रूहानी दुनिया का भी यही मामला है कि उसके अंदर भी जो है ना वो जो बेस नरिशमेंट है, बेस नरिशमेंट बुनियादी जो है वो न्यूट्रिशन जो कि रूह की है, वो आपने हर सूरत में प्रोवाइड करनी है अपनी रूह को। क्या है? इबादत, तिलावत, अल्लाह का जिक्र, नेकी के काम करना, ये बुनियादी नरिशमेंट है जो कि हर रूह की जो है वो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह हर जिस्म की रिक्वायरमेंट जो है वो बेस नरिशमेंट है, राइट, खाना और पानी। और फिर उसी तरीके से जिस तरह हर जिस्म की एक और भी रिक्वायरमेंट है, बुनियादी रिक्वायरमेंट, कि बुरे यानी डिजीज्ड माहौल से हिफाजत करना, राइट, उसी तरीके से रूह की भी एक बुनियादी रिक्वायरमेंट वो क्या है कि बुरे माहौल से जो है वो उसको बचाना, ठीक है ना। ये तो बुनियाद हो गई ना, जिस्म के अंदर वो बुनियाद, रूह के अंदर ये बुनियाद, ठीक है ना, गुनाहों के माहौल से बचाना, जिस तरह वहां पे वायरसेस और बैक्टीरिया के माहौल से बचाना, ये बुनियाद हो गई। अब फॉर वट एवर रीजन अल्लाह की हिकमत होती है या कोई कोई गलती हो जाती है कभी किसी से, तो इसकी वजह से जो है वो बीमारी लग जाती है, जिस्म को बीमारी लग जाती है, उसी तरीके से रूह को भी जो है वो कोई ऐसी सिचुएशन पेश आ सकती है। अब क्या करना होता है, अब जो है वो उसका इलाज, राइट, दफ्तूर के पास जा करके, डॉक्टर साहब, हकीम साहब के पास जा करके उसका इलाज जो है वो लेना होता है दवा की शक्ल में। इसको जो है वो वज़ाइफ कहते हैं, ठीक है ना, इसको हमारे यहाँ आमतौर पर इसको वज़ाइफ का लफ्ज कह देते हैं, जैसे कि इन सहाबी के साथ ये मामला हुआ, ठीक है ना, गुनाहों से पाक जिंदगी गुजार रहे थे, इबादत वगैरह जो है वो कर रहे थे, लेकिन एज एन एक्सेप्शन अल्लाह ताला की मर्जी इनके साथ ऐसा हो गया कि इनके माली हालात आ गए इनके ऊपर और इनके जिस्मानी में बीमारियों वाले हालात आ गए। वरना रूल क्या है, रूल ये है कि जब आप गुनाहों से पाक जिंदगी गुजार रहे होते हैं, सही गजा अपने बदन को दे रहे होते हैं, रूहानी तौर पर भी सही गजा अपने बदन को दे रहे होते हैं, ठीक है ना, सारे मामले आप शरीयत और सुन्नत के मुताबिक कर रहे होते हैं, यू डोंट गेट सिक, आप बीमार नहीं होते, आप मुआशी तंगियों में गिरफ्तार नहीं होते, आप जिस्मानी बीमारियों में गिरफ्तार नहीं होते, ये रूल है, ये रूल है। और एक्सेप्शन ये है कि कोई हो भी सकता है, जैसे कि ये साहबी हो गए, ठीक है ना। तो अंडर एन एक्सेप्शनल सिचुएशन अब क्या करना होता है, डॉक्टर के पास जाना होता है, डॉक्टर जो आपको दवा बता देते हैं, ये दवा जो है वो किसी जड़ी बूटी की शक्ल में भी हो सकती है, किसी मेडिसिन की शक्ल में भी हो सकती है, और ये दवा जो है वो कुछ पढ़ने के मशगले की शक्ल में भी हो सकती है, पढ़ने के अल्फाज इस शक्ल में भी दवा हो सकती है। ठीक है, तो अल्लाह ताला के कलिमात में जो है वो फिजिकल इलनेसेस का भी इलाज है। ठीक है ना, कुरान मजीद के अल्फाज हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए कुछ और वज़ाइफ हैं, या इवन मशाइख के भी तजुर्बाती तौर पर जो कुछ वज़ाइफ वगैरह वो बताते हैं कि फलाने इसमें इलाही को जो है वो इतनी मरतबा पढ़ लो, और फलाने को जो है वो या बसीरू या बसीरू या बसीरू, या फलानी आयत को जो है वो 70 मरतबा, ये सब पढ़ने की चीज़ है। ये भी जिस्मानी बीमारियों का इलाज करते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये जिस्मानी बीमारी का और ये माली मसले का हल ये बता दिया कि इन कलमात को भी आप पढ़ लें। ठीक है ना, तो इन्होंने इसको पढ़ना शुरू कर दिया, उनका ये मसला भी हल हो गया। ठीक है ना, याद रखें ये सब क्या है कि जब बेस अपनी जगह पे मौजूद है, एज एन एक्सेप्शन सिचुएशन आ जाती है, तब जो है वो दवा की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये नहीं है कि बेस वेस तो कुछ नहीं, उसकी तरफ तो तवज्जो ही कोई नहीं, राइट। बुनियादों को दुरुस्त करने का तो कोई फिक्र ही कोई नहीं, उस तरफ जो है ना वो तो उस तरफ तो यानी देखना ही नहीं है, बस डॉक्टरों के पास भागे चले जा रहे हैं, कभी जिस्मानी डॉक्टर के पास भागे चले जा रहे हैं, कभी जो है वो सो कॉल्ड रूहानी डॉक्टर के पास भागे चले जा रहे हैं, और उनसे जो है बस मुझे पढ़ने को बता दें, मुझे ये वजीफा बता दें, मुझे कोई पढ़ने को बता दें, मुझे कोई पढ़ने को बता दें, राइट, या मुझे कुछ खाने को बता दें। ठीक है, ये तरीका नहीं है, इससे इलाज नहीं होता। ठीक है ना, इससे पता है क्या होता है, ये आजकल इवन मेडिकल डॉक्टर्स भी जो है ना ये अपने ही बारे में, अपने ही प्रोफेशन के बारे में बड़ी सच बोलना शुरू हो गए थोड़ा थोड़ा सा ये लोग भी, है ना, बिलाखिर इनको भी थोड़ी सी सच की तौफीक माशाल्लाह मिल गई है। तो क्या पता है क्या कहते हैं, ये अपने प्रोफेशन के बारे में कहते हैं, मेडिकल साइंस के बारे में कहते हैं कि जो हमारी जो प्रोफेशन है ना, ये इलाज विलाज कोई नहीं है इसके अंदर। ठीक है ना, ये मेडिकल डॉक्टर्स की मैं जुबान को आपके पास नकल करूँ, और किसी एक नहीं, एक से ज्यादा, मेरे तो अपने सगे भाई जो हैं वो मेडिकल डॉक्टर हैं, आपको पता ही होगा अक्सर, को उनके अलावा भी वो कहते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है ना उसके अंदर कोई इलाज इलाज कोई नहीं है, द बेस्ट वी डू इज मैनेज मैनेज द पेन, राइट, कंटेन द क्या कहते हैं वो जो 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 मेस आपने क्रिएट किया हुआ होता है ना अपनी जिंदगी में, बेस के ना होने की वजह से, बेस की तरफ तवज्जो ना करने की वजह से, जो आपने अपने जिंदगी के अंदर एक एक लावा, एक वॉल्केनो, वॉल्केनिक इरप्शन जो आपने क्रिएट किया हुआ होता है ना, हमारी दवाएं ज्यादा से ज्यादा उसको मैनेज कर रही होती हैं, बस इनकी दवाएं भी मैनेज कर रही होती हैं, और ये जो मेडिकल इंडस्ट्री की जो इन्वेंशन है ना, एक से एक इन्वेंशन, हमारे वालिद साहब इस वक्त बिल्कुल जो है वो साहिब फिराश हुए हुए हैं, लेकिन हम हैरान है मेडिकल इन्वेंशन, राइट, ऐसी ऐसी मेडिकल इन्वेंशन, ऐसी ऐसी जो है वो चीज़ें मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, इसको फलाना काम हो जाए, अजी अच्छा वो सिक्रीशन हो रही है तो ऑब्सक्शन के लिए जो है वो ये मशीन आ गई, अच्छा बेड सोर्स हो रहे हैं तो बेड सोर्स को अवॉइड करने के लिए जो है वो ये स्टिकर्स आ गए हैं, पैडेड स्टिकर्स आ गए हैं, और ऐसे मैट्रेसेस आ गए हैं, एक से एक चीज़ें जो है वो मौजूद हैं। ये क्या कर रही हैं सारी चीज़ें, इलाज कोई नहीं कर रही हैं चीज़ें, ये मैनेज कर रही हैं, ये सिर्फ आपके क्रिएटेड मेस को, या जो भी मेस क्रिएट हुआ हुआ है, अब अल्लाह की तरफ से भी कुछ होती हैं, कुछ हमारी अपनी कई हरकतें होती हैं, उसको मैनेज कर रही होती है। तो ये इलाज का तरीका नहीं है, इलाज का तरीका है यू फिक्स द बेस, यू फिक्स द फाउंडेशन, चाहे वो जिस्मानी मामला हो चाहे वो रूहानी मामला। ठीक है, आपको बहुत एक्स्ट्रा टाइम ले लिया, अल्लाह ताला बात की समझ अमल की तौफीक अता फरमाए, वा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।